समर्पित हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो आज हम भगवान जो भगवद गीता ग्रंथ हमें प्रदान किए हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और भगवान हम सबसे क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से हम जन्म ग्रहण करते हैं तो हमारे पिता हैं, तो हर एक पिता अपने पुत्र से कुछ अपेक्षा करता है कि मेरा पुत्र किस प्रकार से कार्य करे। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं कि मैं पिता हूँ, पितामह ग्रैंडफादर भी हो और मैं पालन करने वाला भी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान हमारे असली पिता हैं। भगवान क्या है? हमारे असली पिता हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान पिता इसलिए हमें कह रहे हैं क्योंकि भगवान के सारे जीव उनके शाश्वत अंश हैं। तो अर्जुन के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी और वो समस्या क्या थी कि उनको युद्ध करना था अपने ही लोगों के साथ, अपने जो भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार वाले हैं, उनके साथ ही उनको युद्ध करने के लिए तैयार होना था। तो अर्जुन पहले तो बहुत उत्साहित था कि मुझे युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन जैसे रणांगन में पहुंचता है भगवान कृष्ण के साथ, और कृष्ण क्या बनते हैं? अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो अर्जुन के जब वो सारथी बने भगवान, तो उनको उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ले गए। और युद्ध भूमि में ले गए तो अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की कि हे कृष्णा, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो आप क्या करो, सेन यरु भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। तो भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। जो मतलब अपनी जो स्थिति है उससे नीचे गिरते नहीं है। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे बन जाए या माखन की चोरी करे या यशोदा माता उनको उखल से बांध दे या फिर गोवर्धन को वो धारण करे या जो भी कार्य करे या फिर अर्जुन का सारथी बने, तो भगवान क्या रहते हैं? भगवान ही रहते हैं। या हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम अपने स्थिति से हमेशा नीचे बहते हैं, गिरते हैं। इस प्रकार से भगवान वो कहते कि हे अच्युत कृष्ण, आप मुझे ले चलो और दिखाओ कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। तो भगवान बड़े चतुर हैं, कृष्ण से अधिक चतुरी संसार में कोई नहीं है। मतलब अब देखो कि इस जगत में कोई मरना नहीं चाहता, मरने के लिए कोई तैयार है? नहीं है। हम हर एक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, मरना उसको अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार से जो हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु का नाम सुना है ना, हिरण्यकश्यपु वो भी मरना नहीं चाह रहा था, हिरण्यकश्यपु भी जीवित रहना चाह रहा था। हिरण्यकश्यपु के एक भाई थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। हिरण्य का मतलब होता है सोना और अक्ष का मतलब है आंखें। जिस व्यक्ति की आंखें सदैव सोने में लगी रहती हैं, उसको क्या कहते हैं? हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यपु कौन है? हिरण्य मतलब सोना, कश्यपु मतलब मुलायम बेड है ना, जिसको सोना, सोना मीन्स गोल्ड है ना, और कश्यपु मीन्स बेड, जो सदैव धन एकत्रित करने में और बेड में सोना चाहता है, स्लिप एंजॉय करना चाहता है, वो व्यक्ति कौन है? हिरण्यकश्यपु है। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने जब सोच सुना कि मेरे भाई का वध भगवान ने किया है, उनके भाई हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा था वराह रूप में आकर, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं उस भगवान कृष्ण या विष्णु का बदला लूंगा। तो इसलिए वो बहुत शक्ति संपन्न थे हिरण्यकश्यपु। एक दिन उनके महल में नारद मुनि आते हैं। कौन आते हैं? नारद मुनि। तो नारद मुनि जहां जहां जाते हैं वहां वहां कृष्ण के नामों का गुणगान करते हैं। उनकी जो जीभ है किससे भरी रहती है? कृष्ण के नामों से। इसलिए एक भक्त का, एक व्यक्ति के जो जीभ है उसका मुंह है किस चीज से भरा होना चाहिए? भगवान के नामों से। अभी ये संसार में हम क्या क्या नहीं, मुंह को डस्टबिन बना लिया है। क्या बना लिया है? कोई भी गंदी चीज सारे अंदर डालते रहते हैं, बीड़ी है, तम्बाकू है, गुटखा है, क्या क्या चीजें भर जाता है। जैसे डस्टबिन में आप थूकते रहते हो ना, धीरे धीरे भरता है भरता है भरता है, तो वैसे ही मुंह भी एक डस्टबिन के समान हो जाता है। और व्यक्ति जो उचित नहीं है ऐसी चीजें भरता रहता है। थोड़ा सा आगे आ सकते हैं ना, वो लोग भी बैठेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो हिरण्यकश्यपु था उसने सोचा कि मैं भगवान को मारना चाहता हूं। तो उनके वहां नारद आते हैं उनके महल में। तो नारद मुनि का काम ही है जहां जहां जाए वहां वहां उनके साथ भगवान का नाम चलता है, भगवान का नाम वो उच्चारण करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण और उनका जो नाम है उसमें कोई भेद नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरे ने पूछा कि इसका नाम क्या था, एक और तीसरे व्यक्ति ने बोला इसका नाम अमर था। क्या नाम था? लेकिन वो क्या हो गया? मर गया। मतलब इस संसार में नाम अलग है और व्यक्ति अलग है। जैसे अभी मुझे प्यास लगेगी तो मैं कहूंगा पानी पानी पानी, तो मेरी प्यास बुझेगी? क्या करना पड़ेगा मुझे? पानी पीना पड़ेगा। एक बार एक कुछ लोग जा रहे थे कार से, तो एक सिग्नल में कार रुकी तो कोई भीख मांगने के लिए आया। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम लक्ष्मीपति है। क्या है? लेकिन क्या काम कर रहा है? हाँ, तो संसार में इस जगत का ही स्वभाव है। इस जगत में नाम कुछ है और काम कुछ है। तो लेकिन भगवान कृष्ण का जो नाम है और भगवान उसमें कोई अंतर नहीं है, ये विशेषता है। इसलिए भगवान के नामों का जब हम उच्चारण करते हैं तो भगवान स्वयं उस व्यक्ति के पास निवास करते हैं, भगवान स्वयं उस व्यक्ति के हो जाते हैं। इसलिए नारद इस संसार में घूमते रहते थे, उनको कोई भय नहीं था। बचपन में आप सबको अनुभव होगा, छोटे होते हैं तो अंधेरे से भय लगता है, लगता है कि नहीं? तो माता पिता या नाना नानी वो कहते हैं कि बेटा क्या बोलो? राम, भगवान का नाम बोलो, अंधेरे में डर नहीं लगेगा। हाँ, हम सबको अनुभव है। तो उसी प्रकार से इस संसार में हम हमेशा डर के जी रहे हैं, है कि नहीं? कितना कष्ट है, लेकिन हम एक उपाय ढूंढ नहीं रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमें हमेशा हमेशा सुखमय जीवन जीऊं, और वो सुखमय जीवन इस संसार में प्राप्त होने वाला नहीं है। हम तो सुख चाहते हैं, लेकिन इस जगत में सुख बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, ना के बराबर इस संसार में सुख है। जो मिले भी तो भी हमारी तुष्टि नहीं होती, हमें और सुख की कामना होती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में गया, अभी ये अबू धाबी सारा रेगिस्तानी है ना, रेगिस्तान में गया तो वो इतना अंदर अंदर चला गया कि वो बहुत थक गया, चल चल के खत्म नहीं हो रहा था, और ऊपर से कड़ी धूप हो रही थी, और जब ये चल रहा था तो इसको प्यास लग गई, नीचे से वो बालू गर्म हो गई थी, ऊपर से सूर्य की गर्मी थी, जिसके कारण उसको बहुत प्यास लग रही थी, प्यास के मारे थके हारे वो मरने जा रहा था। तो वो चल 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 के थक गया तो घुटने पे चलने लगा, फिर अपने हाथ ऐसे करके चलने लगा और सोचने लगा मुझे क्या चाहिए, पानी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जीवित रहूंगा। हाँ, तो अचानक ऐसे जब थक हारे गिर पड़ा तो उसको एक जोर से आवाज सुनाई दी, और आवाज क्या सुनाई दी, एक हेलीकॉप्टर वहां से आ गया, आ रहा था, और हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा था नीले अक्षरों में पानी, क्या लिखा था, पानी। और वो हेलीकॉप्टर, उसको लगा ये हेलीकॉप्टर मुझे बचाने के लिए ही आया है, तो इस प्रकार से वो सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर मुझे बचाने, और वास्तव में उसने वही देखा, हेलीकॉप्टर उसके आस पास आकर उतर गया और उसकी आंखें उस तरफ जा रही थी कि कब वो कौन व्यक्ति बाहर निकलेगा, शायद उसके ऊपर पानी लिखा है तो मेरे लिए पानी लेके आएगा। तो एक सफेद कपड़े धारण किया हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला, और वो बाहर निकला उसके हाथ में चम्मच था, क्या था, जब खाते हो ना सुबह शाम चम्मच से, इतना सा चम्मच था, और वो चम्मच लेके ऐसे चल रहा था उसके पास, और वो चम्मच लेके जा रहा था, उस व्यक्ति के पास गया, उसका मुंह खोला और चम्मच में इतना सा पानी था वो डाला, और हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। उसकी तुष्टि हो गई नहीं, उसकी संतुष्टि हो गई क्या, उसकी बल्कि और प्यास बढ़ गई, वो और परेशान हो गया। तो इससे हम देखते हैं कि हम सबका जीवन भी रेगिस्तान की तरह है कि नहीं, हम सब लोग उस व्यक्ति की तरह थके हारे हैं, हम सब लोग उस व्यक्ति की तरह बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत अधिक प्यासे हैं, और हम सबको कौन सी प्यास लगी हुई है, सुख चाहिए, क्या चाहिए हमें, आनंद चाहिए। इसलिए तो लोग कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना दूर दूर, किसकी तलाश में हम घूम रहे हैं सब लोग, सुख की तलाश में। तो ये सुख ऐसी वस्तु है जो दिखती नहीं है लेकिन अनुभव की जा सकती है। कई बार एक किसी व्यक्ति को लगता है कि अरे मेरे पास अभी ना साइकिल है, साइकिल नहीं मेरे पास वो टू व्हीलर होनी चाहिए, भारत में होती ना लूना होती है या फिर छोटी सी गाड़ी होती है, कहते अभी कब तक साइकिल ना, मैं सुखी हो जाऊंगा जब मेरे पास क्या आएगा, लूना आ जाएगी। तो लूना आ भी जाती है, वो गांव में लेके यहाँ वहां से घूमने लगता है तो उसको लगता है अरे ये नहीं, हाँ बड़ी होंडा जो बड़ी टू व्हीलर है वो आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ सालों के बाद वो भी आ जाती है, वो कहता है अरे ये नहीं, छोटी सी कार आ जाए ना, हाँ तो फिर सुखी हो जाऊंगा, मारुति की कोई कई सारी कारें हैं, तो वो आ जाती है, फिर भी उसकी सुख की डिमांड पूर्ति नहीं होती, हमेशा लगता है कि सुख आगे है आगे है आगे है। वैसे ही है स्थिति, कैसी है, जैसे एक हिरण होता है जिसको कस्तूरी मृग कहते हैं, क्या कहते हैं, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग ऐसा हिरण है जिसके नाभि में एक सुगंध निकलती है कस्तूरी की, और वो सुगंध इतनी मनमोहक है कि वो हिरण वो कहां से सुगंध आ रही है उसके लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है कितना दूर दूर तक, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं कि सुगंध कहां से आ रही है, मेरे नाभि से ही आ रही है, लेकिन उस सुगंध की तलाश में इतना घूम घूम के फाइनली थक के मर जाता है, क्या होता है, मर जाता है। वैसी हमारी दशा है, हम भी जीवन से बुढ़ापे से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुख की तलाश में है। माँ के गर्भ से बाहर आते कि नहीं आते हैं तो रोने लगते हैं, मतलब इस जगत में हमारे जीवन में क्या है, केवल रोना है। माँ जन्म देती है तो बच्चा क्या करता है, रोता रहता है, जीवन में जब बड़ा हो जाता है स्कूल नहीं जाना चाहता, स्कूल में माता पिता थप्पड़ मार के भेजते जाओ स्कूल, तो भी वो रोता रहता है, बड़े नौकरी करने के लिए फिर रोता रहेगा, शादी के बाद भी रोता रहेगा, जब बुढ़ापा आएगा
तो भी रोता है और मृत्यु के लिए तो अत्यधिक रोता है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हम अब हमारे जीवन में किसी चीज की तलाश में हैं, किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और सुख को ढूंढ रहे हैं। तो सुख वास्तव में क्या है, हम अपने जीवन में भगवान को ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, घूम फिर के हमें वहीं आना होगा। हाँ, सुख के लिए कहाँ आना होगा? भगवान के चरणों में आना होगा। इसलिए हाँ, शास्त्र हमें इस चीज की शिक्षा देते हैं कि हम वास्तव में इस संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सुख हमारे बहुत नजदीक है, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? भगवान गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, तुम मेरा शाश्वत अंश हो। हम ये बॉडी तो ये कवरिंग चढ़ाया हुआ है, जैसे इस बॉडी के ऊपर हमने शर्ट पहन लिया, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये शर्ट क्या है? आत्मा का ये शरीर है। किसी के पास स्त्री का शरीर है, किसी के पास पुरुष का शरीर है, किसी के पास गधे का शरीर है, सुवर का है, बिल्ली का है, कुत्ते का है, ये सारे क्या है? कपड़े हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरो पराणी, कि जिस प्रकार से कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु। मृत्यु का मतलब इस शरीर जो खराब हो गया है उसको छोड़ना और नए शरीर को धारण करना, उसको जन्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में वास्तव में भगवान की खोज में हैं, और वो खोज पूर्ण होती है जब हम भगवान के भक्तों के संगति में आते हैं। किसके संगति में आते हैं? भक्तों की संगति में। इसलिए कहते हैं, तेज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम। जो दुर्जन व्यक्ति है, भगवान से दूर जीवन अपना यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या हो जाओ? धीरे धीरे दूर हो जाओ। और जो भक्तों की संगति है, जो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, ऐसे भक्तों के संगति में आ जाओ। ऐसे संगति में क्या है? सुख है, आनंद है, और सुख की शांति है। इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि हमें नियमित कुछ हो जाए हमारे जीवन में, हमेशा अच्छे लोग या भक्तों के संगति में आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संगति में क्या है? हमारा लाभ ही लाभ है, हित ही हित है। हम अपने जीवन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है जानने के लिए के आमी केने आमाय जारे तापत्र। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो सनातन गोस्वामी बहुत बड़े बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे 500 साल पहले। वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने पूछा कि अपनार हिता हित किछु नाही जानी, मैं अपनी भलाई किसमें है और बुराई किसमें ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो आप क्या करो? मुझे बताओ, मुझे सिखाओ। हाँ, इसलिए वो कहते हैं, हाँ, के आमी केने आमाय जारे तापत्र है, कि मैं कौन हूँ और क्यों मुझे इस जगत के दुख मिल रहे हैं, इसके बारे में आप मुझे सिखाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कि हम सब जीव इसका स्वभाव क्या है? भगवान के दास है। तो हमें दास किसी ना किसी का बनना ही है। हम अपने जीवन में किसी ना किसी को बॉस हमने बना लिया है, किसी ना किसी के लिए हम काम कर ही रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में भगवान को अपने बॉस के रूप में चूज करना चाहिए, भगवान को अपने रूप में समझ लेना चाहिए। तो इसलिए हम जब भक्तों की संगति में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि मेरे जीवन, मुझे जीवन क्यों मिला है। जीवन किस लिए मिला है हमें? भगवान को जानने के लिए। और जीवन कितना हमारे पास है? जैसे कोई बहुत बड़ा गुब्बारा है, वो फूल हवा से भरा है, लेकिन एक सुई मारो तो धीरे धीरे हवा क्या आती है? उससे निकलती है और वो छोटा 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 होते जाता है। वैसे हमारा जीवन है, जैसे जन्म लिया और एक सुई वहां मार दी काल ने, तो अभी हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? हाँ, जैसे गुब्बारा की हवा टाइम लगेगा तो धीरे धीरे निकल के गुब्बारा फिनिश हो जाएगा, वैसे ही हमारा जीवन भी फिनिश हो जाएगा। हम सबके पास जिनके सांस मिले हैं, सांसें कितनी मिली हैं, जिनके मिली होती हैं कि जितनी सांसें लेने का आपको अधिकार है, एक भी एक्स्ट्रा सांस आप नहीं ले सकते, चाहे आप जितना बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितने बड़े बिल्डिंग ऐश्वर्य क्यों ना हो, धन हो, सब कुछ हो, लेकिन एक्स्ट्रा सांस आप नहीं ले सकते, चाहे हॉस्पिटल में रह के भी आपको अलाउड नहीं है, इतना प्रकृति स्ट्रांग है। तो इसलिए हमारा जीवन निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, और हम सामने देख रहे हैं कि हम सबके पास, किसी की आयु 20 साल की, 40, 30, 50, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु के नजदीक। जैसे हम छोटे थे तो गांव में देखते थे कि एक बार सांप जा रहा था, उसने एक मेंढक को देखा, फ्रॉग मेंढक को देखा और तुरंत उस मेंढक को ऐसे अपने मुंह में डाल दिया, तो उस मेंढक को वो तुरंत निगलता नहीं है, क्या करता है, मुंह में रखता है, धीरे 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 उसको अंदर लेता है। तो मैंने खुद देखा कि मेंढक एक सांप के आधे में चला गया था, मुंह आधा अंदर आधा बाहर, मरा नहीं था वो, लेकिन फिर भी अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है वो मेंढक और कुछ ढूंढ रहा है खाने के लिए। मतलब ऐसे हम सब की स्थिति है, हम सब लोग उस मेंढक की तरह मृत्यु या काल के चपेट में आ गए हैं, आधा जीवन निकल गया है, थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मेंढक के समान और तलाश कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। बल्कि भगवान कहते हैं, अरे हाँ, इतना प्रयास भौतिक जीवन में कर रहे हो, थोड़ा सा प्रयास मुझे समझने के लिए करो, इतना समय आप इतने कार्यों में लगा रहे हो, थोड़ा सा समय क्या करो, मेरे लिए लगाओ, हाँ, तो आप देखोगे कि कितना अधिक आनंद अनुभव कर सकते हो। हाँ, इसलिए शास्त्र या भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनको समझने के लिए उनके भक्तों के संगति में आना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों के संगति में आने से ही क्या होगा, सारी आध्यात्मिक सिद्धि हमें प्राप्त होगी, थोड़ी सी, क्योंकि हम जानते नहीं अपने बारे में। हाँ, हमें अपने बारे में जानने का मौका कहाँ से मिलता है, भगवान के भक्तों के संगति में आते हैं। एक बार एक पंछी, ईगल को क्या कहते हैं, बाज, बाज जानते, सब जानते ना, बाज पक्षी। तो बाज जो पक्षी बहुत उड़ता है ऊंचाई पर, तो वो जब ऊपर से जा रहा था भारत में एक गांव के ऊपर, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति खा रहा है भोजन और हाथ ना धोकर वैसे ही गीता को पकड़ लिया, हाथ नहीं धोके वैसे ही सारा चावल लगा हुआ है। तो उस बाज ने कहा, देखो अभी कलयुग आ गया, झूठे हाथ से ही लोग क्या कर रहे हैं, भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। हाँ, सारा राइस वगैरह दाल सब हाथों में लगी हुई है, मुंह में खाया हुआ है। तो ऐसा सोच रहा था, उसी समय उस बाज का जो अंडा है वो नीचे गिर जाता है। जैसे गिरता है नीचे, तो वो कहाँ जाता है, वहां नीचे बहुत सारी मुर्गियां थी, उन मुर्गियों के बीच में वो अंडा गिर जाता है, और बहुत सारी मुर्गियां भी तो अंडे देती हैं, और अंडे देकर उससे क्या नई और मुर्गियां, मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं। तो वो बड़ा सा अंडा गिरा, तो एक मुर्गी ने उस अंडे को भी अपने अंडों के साथ रख लिया, और कुछ दिनों के बाद मुर्गी अंडे से बच्चा पैदा करने के लिए उसके ऊपर बैठती है ना, फिर कुछ दिनों के बाद जन्म लेता है जो मुर्गी के पिल्ले हैं। तो जब कुछ दिनों के बाद और उन बहुत सारे अंडों में से मुर्गियां भी आई, और वो एक जो अंडा गिरा था उससे क्या आया, बाज का पिल्ला भी आया। तो वो बाज का पिल्ला मुर्गी के पिल्लों में रह के कैसे था, मुर्गी के समान ही काम करता था, चिव चिव करते रहता था, और वो गर्दन ऐसी जैसे मुर्गी या गर्दन नीचे करके खाती रहती है, वैसे ये भी कर रहा था। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुर्गी नहीं हूं, मैं कौन हूं, बाज हूं। ये उसको उनके संगति में समझ में नहीं आ रहा था। वो बाज मुर्गियों की तरह ही कार्य कर रहा था, मुर्गी की तरह ही रह रहा था, मुर्गी की तरह ही आवाज कर रहा था, मुर्गी की तरह ही खा रहा था, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था कि मैं मुर्गी नहीं हूँ, मैं बाज हूँ, बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो एक बार एक साधु वहां से जा रहा था, उसने देखा अरे ये क्या है, मुर्गी के पिल्लों के बीच में बाज का पिल्ला भी है जो इतना बड़ा है। उन्होंने क्या किया, नहीं उस पिल्ले को अलग किया बाज के और उसको उठाया और ऊपर फेंका और वो चिल्लाते चिल्लाते गिर गया। बाज तो उड़ने में इतना तेज होता है और उसकी नजर भी बड़ी शार्प होती है। तो जब वो नीचे गिरा तो साधु को लगा कि ये देखो मुर्गियों के बीच में रह के क्या बन गया है, मुर्गी बन गया है। फिर उसने उस बाज के पक्षी को फिर से लिया और थोड़ा सा ऊंचा जो पहाड़ी था उसके ऊपर ले गया। पहाड़ी के ऊपर ले जाकर उस बाज का गर्दन ऐसे ऊपर किया और उसको आकाश दिखाया। क्या दिखाया, आकाश। जैसे आकाश दिखाया और उसको ऐसे ऊपर उछाला तो वो उड़ने लगा, ऊपर ऊंचाई पर जाने लगा। तो वैसे हमारी स्थिति है, हम भी साधारण जीव के भांति हैं। हम भी लोगों के बीच में रह के क्या सोचते हैं अपने आप को, मुर्गी के पिल्ले की तरह सोचते हैं। लेकिन हम है नहीं है, हम तो बहुत उन्नत ये हैं, जीव हैं, भगवान के अंश हैं। जब भक्तों की संगति में आते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ और भगवान का शाश्वत सेवक हूँ। ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, भक्तों के साधुओं के संग में आकर। वो तब उसी प्रकार से हम अनुभव कर पाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हम सर्वसाधारण जीवों के भांति, कुत्ते बिल्ली की भांति केवल मनुष्य जीवन खाने में, सोने में, भोग करने में बिताते हैं। हम कुत्ते बिल्ली जैसा हमारा जीवन नहीं है। मनुष्यों के पास उन्नत बुद्धि है और वो बुद्धि क्या है, जिसके द्वारा वो भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भी वो जान सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें भक्तों के संगति में आना चाहिए। और भक्तों की संगति में आकर क्या होगा, भक्तों के संगति में जब हम आते हैं तो हमें अपने जीवन की, जीवन का जो लक्ष्य है या जीवन की जो श्रेष्ठता है वो अनुभव होती है। इसलिए आप सबको यही प्रयास करना चाहिए कि जब भी आपको समय मिलता है या समय निकालना चाहिए रोज, नहीं तो समय हमारे पास कम है, बहुत कम समय है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसलिए सबके पास समय कम है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। वही हमारा असली बैंक बैलेंस है। हम यहाँ इतने दूर आकर क्या कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो वैसे ही असली बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा। वो क्या जाएगा, भगवान की भक्ति। जब मृत्यु आएगा तो जितना भी धन हम कमा रहे दिन रात काम करके वो हम साथ ले जाएंगे नहीं। तो जो अलेक्जेंडर था जिसने पूरे विश्व को जीता था, उसकी जब मृत्यु आई तो उसने अपने लोगों को कहा कि जब मृत्यु आएगी मेरी तो क्या करना, तीन चीजें करना, मेरे शरीर जो मरा हुआ देह है उसको ले जाने के लिए डॉक्टर होने चाहिए, चार क्या होने चाहिए, डॉक्टर उसको कंधा लगा के ले जाए और जिस रास्ते से मेरे कब्र तक जाएगा वो रास्ते में सारे जो मैंने जगत में जीते हुए हीरे मोती धन क्या करो, बिछा दो। और मैं जब मुझे जमीन में डालेंगे तो मेरे दो हाथे उसको ऐसे ऊपर रखो। तो किसी ने पूछा कि ऐसे आप क्यों करना चाहते हो, तो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट कहता है कि मैं सारे जग को ये सिखाना चाहता हूँ कि मैंने पूरे विश्व को जीत लिया। अब देखो जिसने विश्व को जीत लिया उसके पास कुछ कमी है, नहीं है, सारे सुख है, अमाप धन है, सब कुछ है। लेकिन वो मृत्यु के समय ये सिखाना चाह रहा था सारे जगत को कि हर एक व्यक्ति इससे शिक्षा ले कि मेरे पास धन होकर भी और बड़े बड़े डॉक्टर्स होकर भी मुझे वो मृत्यु से नहीं बचा पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे शरीर मरे हुए देह को ले जाने के लिए कौन चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। और ये भी पता चले सारे संसार को कि जो धन मैंने इतना कमाया वो मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं, इसके लिए क्या किया था, उनके हाथ ऐसे खोलकर उनको दफना दिया था। हाँ, तो इस प्रकार से असली कुछ चीज जो हमारे साथ जा सकती है वो है भगवान की भक्ति। कितने हमें की, क्योंकि इस संसार क्या है, हमें भुला देता है। भगवान की भक्ति क्या करता है, भुला देता है। बाहर की जो चकाचौंध है उसकी तरह हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे देखो भारत में जब बारिश के दिन आते हैं तो सड़क में जो लाइट का खंभा होता है, जब लाइट चलती है तो कई सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं कीड़े होते हैं ना, वो आते हैं और उसको उसके आसपास रहते हैं, उसके नजदीक जाना चाहते हैं। या फिर दिया जला के रखा हो तो बहुत सारे कीड़े उसके ओर आते हैं और उस दिया का स्पर्श करके मर जाते। वैसे ही जीवन है, वैसे ही हम लोग ये जो संसार की चकाचौंध है उससे इतने आकर्षित हो जाते हैं, उससे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम अपना मूल्यवान ये जीवन है उसको खो देते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता की शिक्षा हमें देते हैं कि नहीं, आप मुर्गी की तरह नहीं हो, आप कैसे हो, बाज की तरह हो। आपका जीवन कुत्ते बिल्ली सुअर की तरह केवल आहार निद्रा और भोग करने के लिए नहीं बना है, आपका जीवन बना है भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और भगवान के धाम वापस जाने के लिए। भगवान का धाम कौन सा है, वैकुंठ है, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ का मतलब है, वै का मतलब है जहाँ नहीं है, कुंठा मतलब कुंठा मीन्स कष्ट। भगवान का धाम ऐसा है कि जहाँ कोई कष्ट नहीं है, इसलिए उसे वैकुंठ कहते हैं। यार इस जगत को कुंठामय जगत कहते हैं कि यह सदैव व्यक्ति कष्टों से घिरा रहता है, न चाहते हुए भी हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं और सुख कितना है जीवन में न दिखने वाला। जैसे पुराने दिनों में जब किसी को राजा दंड देता था तो उसको एक नाव में बिठा के ले जाता था और उसको पानी में डाल देता था और उसके बाल ऊपर से पकड़ लेता था और उसको डुबा देता था अंदर, सांस अंदर से तड़प जाता था व्यक्ति सांस लेने के लिए, एक क्षण के लिए थोड़ा सा ऊपर निकलता था सांस लेता था फिर उसको अंदर डालते थे ज्यादा समय के लिए। तो हमारा सुख कैसे है, थोड़ा सा सांस लेने को जो मिल रहा है उस व्यक्ति को वैसे ही है। अधिक समय हम क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ये संसार कष्टों का है, इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या करो, मेरे नामों का शरण लो, मेरे नामों का जप करो। इसलिए कलयुग में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कलयुग में क्या विधि है, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों का जप करना। क्योंकि भगवान की सेवा क्या कर सकता है व्यक्ति, भगवान के पास कुछ कमी है, भगवान सारे जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, तो फिर भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार जो बेटा है छोटा सा, पिता के पॉकेट से पैसे लेता है, दुकान से जाके कुछ खरीदता है और पिता को ही देता है, पिताजी ये लीजिए आपके लिए, लेकिन सारी चीजें किसकी है, पिताजी की है। वैसे हम हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं, भगवान की सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि उनके नामों का हम जप करें, ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है, अपने जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना, जप करना। क्योंकि हमारी जीभ चलती नहीं है, जब बहुत अधिक पाप हमारे जीवन में होते हैं पूर्व, तो भगवान का नाम हमारे जीभ से निकलता नहीं। जैसे वाल्मीकि, उसको नारद ने कहा अरे राम राम नाम का जप करो, वो क्या बोल रहा था, मरा मरा मरा, क्या बोल रहा था, क्योंकि इतना पाप उसने किया था। तो जब अत्यधिक पाप होता है तो भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ चलती नहीं है। इसलिए ये पापों को खत्म करना है, क्योंकि कष्ट क्यों है जीवन में, पापों का बोझा है, उसके लिए हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। और रोज सुबह या जैसे भी 10-15 मिनट निकलने चाहिए और माला पर माला पर क्या करना चाहिए, जैसे माला लेकर जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज जिसके पास मोबाइल ना हो, है कि नहीं, बच्चा जन्म लेता है तभी उसके पास मोबाइल आ जाता है आज के समय में। तो भगवान का भी मोबाइल नंबर है, भगवान का मोबाइल नंबर क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में भारत में 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, तो भगवान का ये मोबाइल नंबर 16 डिजिट का है, कितने डिजिट का है? 16 डिजिट का है। तो नंबर है, लेकिन वो नंबर लगाने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चला तो आपके पास भी तो मोबाइल होना चाहिए कि आप लगा लो उस नंबर को। तो मोबाइल क्या, इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये है, माला है, है ना। जैसे आजकल सैमसंग, एप्पल या फिर कई सारे ब्रांड है ना मोबाइल के, नोकिया है, तो वैसे ही ये तुलसी ब्रांड है। ये कौन सा ब्रांड है? तुलसी, गले में भी तुलसी और भगवान का नाम करने के लिए तुलसी, और घर के आगे भी क्या, भारत में आप देखते ना लोगों के घर के आगे तुलसी है, ये तुलसी ब्रांड है। और जैसे मोबाइल के लिए कवर भी आता है, आता है कि नहीं? तो ये कवर है, ये थैली क्या है, कवर डालो और अंदर रखो माला को, और क्या करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसमें कोई रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी डायल करते रहो, जितनी देर बात करो, भगवान का नंबर कभी एंगेज नहीं आता, हमेशा खुला है। चाहे रात्रि में करो या दिन में करो, किसी भी देश में रहो आप, भगवान की यही खासियत है। और किसी भी भाषा में भगवान से आप क्या कर सकते हो, बात, यही विशेषता है। कृष्ण हर भाषा को जानते हैं, यही उनकी खासियत है। तो हम इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं, इतना सरल हमें जीवन दे रहे हैं, क्यों ना हम करें। हम यदि ये लाभ नहीं उठाते तो सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, हम स्वयं हैं। कि आपके हाथ में हीरा मिला और आप क्या करते हो, अज्ञानता के कारण हीरा को खीरा समझते हो, खीरा होता ना, काकड़ी होती है, खाते ना भारत में, जैसे बंगाल में बहुत होता है, हाँ, तो खीरा समझ के फेंक रहे हो। तो हीरा मीन्स एक दुर्लभ मनुष्य जीवन है, भक्ति है, इसको हमें थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। भगवान कभी भूलेंगे नहीं ऐसे व्यक्ति की सेवा को। तो एक भी दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए जब हम भगवान के नामों का अपनी जीभ से उच्चारण ना करें। हर रोज जैसे भक्त लोग माला पर जप करते हैं, है ना, कोई लोग कहते हैं अरे माला की क्या आवश्यकता है, मन में करेंगे, मन में खाते हैं क्या, भूख लगती है तो किस में खाते हैं, प्लेट लेते हैं कि नहीं, इतना बड़ा प्लेट लेते हैं कुछ लोग तो, पूरा ऐसे पहाड़ बनाते हैं और खाते रहते हैं। तो मन में नहीं, मन में कुछ होता है क्या, मन में आप नौकरी के लिए जाते हो क्या, कहेंगे कि मन में आपके पैसे दे दिए हमने सैलरी, ऐसे होगा? मंथली सैलरी मन में आए तो चलेगी नहीं, वो बैंक अकाउंट में आती है, आपके हाथ में आती है। तो भगवान का नाम आता है जब करने के लिए तो हम बहाने मारते हैं, क्या मन में करेंगे, मन इतना पागल है हमारा, मन इतना गंदा है, क्या क्या चीजें मन में आती हैं। तो इसलिए भगवान का नाम कैसे करना चाहिए, माला लेकर अपनी, जैसे मोबाइल हम अपने पास रखते हैं वैसे ही हमें अपने स्थान में क्या रखना चाहिए, एक माला रखनी चाहिए और उस पर हमें जप करना चाहिए, रोज एक माला जप, एक शॉट मन के होते तो माला में, और एक माला जप करने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 8 या 10 मिनट, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट। तो भगवान ने हमें इतना जीवन दिया है 70 साल का, लेकिन रोज हम भगवान के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते, हाँ, सारे अपने कितने लोगों के लिए हम कितना समय गंवा रहे हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, हाँ। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है, आप सब भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत दयालु हैं, जिन्होंने पूरे भारत वर्ल्ड में ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहाँ ये हरे कृष्णा मंत्र का लोग जप नहीं कर रहे हैं, गीता को पढ़ नहीं रहे, करताल मृदंग के साथ कीर्तन नहीं कर रहे हो, सब जगह कर रहे, अफ्रीकन, चाइनीज, रशियंस, सब जगह लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, माला पर जप करे। कितने लोग तैयार हैं माला पर जप करने के लिए, सब लोग, हाँ, कौन कौन कर रहे हैं, हाथ भी ऊपर कीजिए, कौन कौन कर रहे हैं,
अच्छा माला में जप कर रहे हैं,
माला पर कौन कौन जप कर रहे हैं,
ओ माला जप कौन कौन कर,
अच्छा, ओ अच्छा है। तो माला पर आप प्लीज जप करिए रोज, और ऐसे ही ना वीकली भक्तों के संगति में आइए और सुनिए और समय निकाल कर पढ़िए, है ना, तो आप यहाँ रह के भी आप भगवान के नजदीक रहोगे, हाँ, चाहे दूर रह के भी, है ना। तो भगवान जो व्यक्ति हरि नाम का जप करता है भगवान उसके नजदीक निवास करते हैं, है ना। इसलिए हम यहाँ इतने दूर से आए हैं, आप सब सुख के लिए आए कि नहीं, यहाँ आने का क्या उद्देश्य क्या है, यही है तो। लेकिन यहाँ आकर भगवान इतने दयालु हैं, संसार में आबू धाबी में इतने लोग हैं, लेकिन आपको चूज किया है कि नहीं, आप लोग सुनेंगे भगवान के बारे में। हम भगवान ने क्या किया है, कुछ कुछ लोगों को ढूंढा है और उनको यहाँ अपने बारे में सुनने का, कीर्तन करने का, प्रसाद लेने का लाभ दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कितना चाहते हैं। संसार में हजारों लोग घूम रहे हैं अबू धाबी में बाहर, है कि नहीं। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए और भगवान का भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, जोर से हम एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो आप लोग सब आने से पहले